स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 23 मार्च दिन गुरुवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। इस्लामिक स्टेट ने ली लंदन पर हमले की जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा, ब्रिटेन में पैदा हुआ हमलावर।
ये इस किस्म के अटैक 2013-2014 के बाद ज्यादा हो रहे हैं। ये इस किस्म का जो पर्सुएशन है बाहर से या सोशल मीडिया से, उसको रद्द नहीं किया जा सकता।
ब्रिटानी संसद में दी गई मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि, पुलिस की कार्रवाई में 8 संदिग्ध गिरफ्तार, कई जगह छापे। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद कराने की कार्रवाई हुई तेज, सैकड़ों के सामने रोजगार का संकट।
पुलिस आई है, पुलिस ने गाली बकी है, गुप्तार बकी है, ये फेंक दो, अगर जो भी मिल गया उसे ले जाएंगे, बंद कर देंगे, ये तुम्हारा मास जितना भी है सब खट्टे पे जाएगा।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। लंदन में संसद के सामने गुरुवार को हुए हमले के बाद ब्रिटेन के सुरक्षा बलों ने देर रात बर्मिंघम शहर में छापेमारी कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक पुलिस ने 6 जगहों पर छापेमारी की है। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 30 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से कईयों की हालत गंभीर है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक अमाक समाचार एजेंसी ने यह बताया है कि आईएस चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक सैनिक ने वेस्टमिंस्टर पर हमला किया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने संसद में इस बारे में कहा है कि ये हमलावर अकेले ही काम कर रहा था और हमलावर ब्रिटेन में ही पैदा हुआ था और कुछ साल पहले खुफिया एजेंसियों ने इसके बारे में जांच भी की थी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री और लंदन के पूर्व मेयर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि इंटरनेट कंपनियों को चरमपंथी संगठनों को कट्टरपंथी विचारधारा का सोशल मीडिया पर प्रसार करने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। अमेरिका के MSNBC नेटवर्क के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, बोरिस जॉनसन कह रहे थे कि इन चीजों के बारे में इंटरनेट और सोशल मीडिया कंपनियों को सोचना होगा। इस तरह की सामग्री को हटाना उनकी जिम्मेदारी है। भड़काने वाली सामग्री चरमपंथी कैसे बना जाए इसके बारे में जानकारी और कट्टरपंथी विचारधारा और संदेशों को हटाना जरूरी है। ये थे बोरिस जॉनसन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। एयर इंडिया के एक कर्मचारी के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के कारण शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये वारदात कथित तौर पर पुणे दिल्ली उड़ान में हुई। गायकवाड़ उस्मानाबाद से लोकसभा सांसद हैं। कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उनकी ऐनक तोड़ दी गई और उन्हें भला बुरा कहा गया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने संसद परिसर में ये कहा कि किसी नागरिक को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक पूर्व रूसी सांसद डेनिस वोरोनेंकोव को गोली मार दी गई है। यूक्रेन के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मारे गए पूर्व सांसद क्रेमलिन के आलोचक थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने कहा है कि ये रूस का राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद है, लेकिन रूस ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। डेनिस वोरोनेंकोव रूस की रूसियन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे हैं और उन्होंने 2014 में क्राइमिया पर रूस के कब्जे की आलोचना की थी। वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भी आलोचक रहे हैं। उन पर धोखाधड़ी का मामला था और वो पिछले साल अक्टूबर में रूस से यूक्रेन चले गए थे, जहां हाल ही में उन्हें नागरिकता मिली थी। कीव पुलिस के प्रमुख आंद्रे क्रिशेंको ने इस बारे में ये पुष्टि की है। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और उनके अंगरक्षक को चोट लग गई है। हमलावर भी घायल हो गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक मारे गए शख्स की पहचान रूसी सांसद ड्यूमा के पूर्व सांसद थे, जिन्हें हाल ही में नागरिकता मिली थी और सुरक्षा भी मुहैया कराई गई थी। ये थे आंद्रे क्रिशेंको के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इराक के मोसुल के पुराने शहरी इलाके में अब भी करीब 4,00,000 इराकी नागरिक फंसे हुए हैं। मोसुल को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए इराकी सेना ने अभियान छेड़ा है। लाखों लोग पहले ही मोसुल शहर से विस्थापित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी मामलों की एजेंसी का कहना है कि अभी शहर में जो लोग फंसे हुए हैं उनके सामने खाने की कमी जैसी कई दिक्कतें मौजूद हैं। जिनेवा में सीरिया शांति वार्ता शुरू होने वाली है और इससे पहले सीरिया के हामा और राजधानी दमिश्क के कई इलाकों में विद्रोहियों और सेना के बीच भीषण हिंसक संघर्ष शुरू हो गया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, लंदन हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है और कहा है कि उसके एक सैनिक ने इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले में हमलावर समेत 4 लोग मारे गए हैं और करीब 40 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बुधवार को एक शख्स ने पहले अपनी कार से ब्रितानी संसद के करीब वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर कई लोगों को कुचल डाला और संसद में घुसने की कोशिश में एक पुलिस वाले की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसके बाद संसद की सुरक्षा में तैनात बंदूकधारियों ने उस हमलावर को मार गिराया। आज मृतक पुलिसकर्मी कीथ पामर को संसद में श्रद्धांजलि दी गई और प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने कहा कि ब्रिटेन इस हमले से डरेगा नहीं। उन्होंने संसद को बताया कि संसद पर हमला करने वाला व्यक्ति ब्रिटेन में पैदा हुआ है और एक बार हिंसक कट्टरपंथ से जुड़ाव को लेकर उसकी जांच भी हो चुकी थी, हालांकि उनमें चरमपंथी हमला करने की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई गई थी। इस हमले के सिलसिले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लंदन और बर्मिंघम में 6 जगहों पर छापे मारे गए हैं। सुनिए लंदन से विदित मेहरा की रिपोर्ट।
वेस्टमिंस्टर ब्रिज के दाहिनी तरफ तेजी से एक कार पेवमेंट पर दौड़ रही थी, फिर एक महिला थेम्स नदी में गिर गई। कुछ क्षणों बाद संसद के गेट से लोग भागते हुए दिखे। कुछ चश्मदीदों ने वीडियो बनाने की कोशिश की। 3 बार गोलियां चली। एक हथियारबंद पुलिस अफसर घायल हमलावर के पास खड़ा है। एक बड़ा चाकू जमीन पर है, एक और चाकू भी पास में पड़ा था। हमले में मारे गए पुलिस अफसर कीथ पामा को श्रद्धांजलि दी गई। जो महिला पानी में गिरी थी उसे गंभीर चोटें आईं। कई लोग घायल हुए, कुछ सड़क पर, कुछ पेवमेंट पर। कुछ की हालत काफी गंभीर है। इस सारी घटना के गवाह एक व्यक्ति ने कहा कि ये सब कुछ मानो पल भर में हो गया हो।
मुझे गाड़ी टकराने की आवाज आई, सब इतना जल्दी हो रहा था। मैंने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को गाड़ी से टकराते हुए देखा।
पुलिस और राजनेता जोर दे रहे हैं कि इस तरह के आतंकी हमले लोगों को लंदन आने से रोकने में कामयाब नहीं होंगे। लंदन के मेयर सादिक खान:
हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे, वो हमें बांट नहीं सकते, हम आतंकवादियों के आगे नहीं झुकेंगे।
ब्रितानी प्रधानमंत्री ने हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन आतंकी हमले के खतरे का आधिकारिक स्तर नहीं बढ़ाया गया है।
जानकारी दे रहे थे विदित मेहरा। ब्रितानी संसद के बाहर फिलहाल क्या हालात हैं, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, ये जानने के लिए थोड़ी देर पहले मैंने वेस्टमिंस्टर के करीब मौजूद बीबीसी संवाददाता समरा फातिमा से बात की।
जी अमरीश, सुरक्षा इंतजाम काफी कड़े नजर आ रहे हैं और ये जो पूरा इलाका है इसको सील कर दिया गया है, आम लोग वहां दाखिल नहीं हो सकते हैं। एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जहां से सांसद पार्लियामेंट तक गए और वहां जो 1 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू की गई। मकसद है ये दिखाना कि इस तरह के हमलों से या इस तरह की घटनाओं से लंदन सहमने वाला या अपने हौसले को खोने वाला नहीं है। और ऐसा ही कल रात प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इस तरह के हमलों से हमें डरना नहीं है और हमें अपनी स्पिरिट, हमें अपना हौसला बरकरार रखना है। हालांकि उस तरह की चहल पहल और उस तरह की हलचल नजर नहीं आ रही है जिस तरह से आमतौर पर इन सड़कों पर होती है। बहुत सारे पर्यटक होते हैं, लोग अपने कामों के लिए आ रहे होते हैं, ये भीड़ भाड़ वाले लंदन के इलाकों में इस इलाके का शुमार है, उस तरह का माहौल नजर नहीं आ रहा है।
सुमरा, जैसे आपने बताया कि सुरक्षा के इंतजाम काफी कड़े हैं, क्या लगता है आपको कितना वक्त लगेगा वहाँ चहल पहल को लौटने में, लोगों की का जो आना जाना है, पर्यटकों का जो आना जाना है वहाँ पर सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा?
ट्रेंड है हम लोगों का, और जैसा कि अभी पिछले दिनों नीस और जर्मनी में भी देखा गया कि अचानक से कोई आदमी आता है और गाड़ी से रौंदता हुआ निकल जाता है। तो इस तरह की चीजों को कि लोग कल्पना नहीं करते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है तो जाहिर सी बात है लोगों के दिल में डर बैठ जाता है। और ऐसा ही इस इलाके में भी अभी लग रहा है। हालांकि सड़कों पर चिटपट लोग हैं लेकिन सरह नहीं है, तो फिलहाल तो लग रहा है कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। कल रात से अब तक पुलिस की तरफ से भी यही कहा गया है कि फिलहाल यहाँ जांच जारी है और जब तक पूरी उनकी जांच नहीं हो जाती तब तक इलाके को दोबारा से खोला नहीं जाएगा आम लोगों के लिए। इसमें कितना समय लगेगा, इसमें फिलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितना समय लगेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोशिश यही है। पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है, कई जगह छापे मारे गए बर्मिंघम में, और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि लंदन के पूर्वी इलाकों में भी पुलिस का इरादा है और छापे मारने का। कब ये पूरी कार्रवाई पूरी होगी और इन इलाकों का जनजीवन सामान्य होगा, फिलहाल इसको कुछ साफ साफ कहा नहीं जा सकता है।
لندن کے تازہ حالات کی جانکاری دے رہی تھیں سمرہ فاطمہ۔ لندن اور پیرس جیسے یورپ کے شہروں میں پہلے کی چرمپنتھی گھٹناؤں کو دیکھتے ہوئے سرکشا بہت کڑی کر دی گئی ہے، لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ حملوں میں گولہ بارود کا استعمال کم ہونے لگا ہے اور حملہور گاڑیوں اور چاقو جیسے ہتھیار سے اپنے منصوبوں کو انجام دے رہے ہیں۔ ایسے حملے کبھی وفل ہو جاتے ہیں تو کبھی بھاری نقصان پہنچاتے ہیں۔ خفیہ ایجنسیوں کو ایسے حملے کو بھانپنے میں کافی مشکل ہوتی ہے۔ سنیے لندن سے پون سنگھ اتل کی رپورٹ۔
ہتھیار بند پولیس والے برطانی سنسد اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی سرکشا کے لیے کئی بار تھیمز ندی میں ابھیاس کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں برطانی سنسد کی سرکشا کو اور کڑا کر دیا گیا ہے، کیونکہ کئی بار لوگ سنسد تک پہنچ جاتے تھے۔ سی سی ٹی وی کیمرا، ایکس رے مشین اور ہتھیاروں سے لیس سرکشا کرمی ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ حملہ ور پہلی سرکشا ریکھا تک پہنچ گیا تھا، پر پھر پولیس والے نے اسے وہیں روک دیا۔ خفیہ ایجنسیاں یا پولیس نے بھلے ہی ایسی وارداتوں کے پیچھے لوگوں کو پہچاننے میں اپنی کشلتا بڑھا لی ہے، لیکن ایسے کئی حملے دیکھنے کو ملے ہیں جنہیں بھانپنے میں خفیہ ایجنسیوں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک سال پہلے برسلز میں ہوئے حملے لندن میں کل ہوئے حملے کے مقابلے کافی تیاری سے کیے گئے تھے۔ بیتے ہفتے پیرس کے اورلی ہوائی اڈے پر ہوئے ایک حملے میں ایک شخص نے پولیس کی گن چھین لی، جس کے بعد سرکشا کرمیوں نے اس شخص کو گولی مار دی۔ برلن اور نیس کے حملے میں بھی یہ دیکھنے کو ملا کہ کیسے ایک گاڑی کے استعمال سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں ہوئی کئی وارداتوں میں حملہور تتھاکتھت چرمپنتھی سموہ اسلامک اسٹیٹ کے حملہ کرنے کے طریقوں سے پریرت رہے ہیں، پر ضروری نہیں ان کا رشتہ اس گٹ سے ہو۔ پولیس ادھکاری ریچرڈ والٹن:
حملے جس میں بہت کم تکنیک کا استعمال ہوا ہو انہیں روک پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خفیہ ایجنسیاں ایسے حملوں کے بارے میں نہ بتائیں تو کئی جانیں جا سکتی ہیں۔
حملہور بھلے ہی مر گیا ہو، پر کیا وہ اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، یہ جاننا پولیس اور خفیہ ایجنسیوں کی پراتھمکتا ہے۔
یہ تھے لندن سے پون سنگھ اتل۔ سوال اٹھتا ہے کہ لون ولف اٹیک، یعنی ایسے حملے جن میں ایک اکیلا ویکتی کنہیں وجہوں سے ریڈیکل وچاردھارا سے پربھاوت ہو جاتا ہے اور ایسی چرمپنتھی گھٹناؤں کو انجام دیتا ہے جیسا ہم نے لندن میں دیکھا۔ میں نے بات کی برٹن کی باتھ سپا یونیورسٹی میں پروفیسر افتخار ملک سے، اور سب سے پہلے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔
اس کو ڈسمس تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سارے یہ جو لونرز ہیں یہ سوسائٹی کے مارجنس پہ رہتے ہیں، خواہ وہ مغرب میں ہیں، یہاں ویسٹ میں ہیں یا مسلم ورلڈ میں ہیں۔ ان کے کانٹیکٹس ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہوں، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس قسم کے لونرز ہیں جو ہیٹریڈ، کانٹیمپٹ اور اس قسم کے جو فرسٹریشن کے میسیجز ہیں وہ پھیلا رہے ہیں۔ مجھے آئیسس کے ایک لیڈر کا بیان یاد آ رہا ہے، 2014 میں محمد العدنانی تھے آئیسس کے اسلامک اسٹیٹ کے لیڈر، انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا اپنی ویب سائٹ پہ اور میڈیا میں کہ اس قسم کے اٹیک ویسٹ میں کرنے چاہیے، آپ مطلب ہیڈ ویپن سے کریں، گاڑیوں سے کریں، اور عام لوگوں کو اور پولیس کو اور یہاں کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو نشانہ بنائیں۔ تو یہ محمد العدنانی کے جو سٹیٹمنٹ تھے یہ 2014 میں آئے، بعد میں ان کو 2016 میں ایک ڈرون اٹیک کے ذریعے مار دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس قسم کے اٹیک 2013-2014 کے بعد زیادہ ہو رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی جو انسٹیگیشن ہے یا اس قسم کا جو پرسویشن ہے باہر سے یا سوشل میڈیا سے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔
جو آرگنائزڈ اٹیکس ہوتے ہیں جیسے 7/7 کا جو لندن پہ اٹیک ہوا تھا، اس کے بارے میں تو تیاری کی جا سکتی ہے، جو سرکشا بل ہیں وہ تیاری کرتے بھی ہیں، سرکاریں پالیسی بناتی ہیں، لیکن اس طرح کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے لیے کیا پالیسی بنائی جا سکتی ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟
تو میرے خیال میں زیادہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ایک تو ان لوگوں کی سائیکولوجیکل ہیلپ ہو اگر اس قسم کا کوئی بندہ نظر آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو ریلیٹیوز ہیں یا ان کے حلقہ میں ہیں، ان کے سرکل میں ہیں، جن کو یہ شک ہے کہ اس قسم کی ٹینڈنسیز یا رجحانات اس بندے میں ڈیولپ ہو رہے ہیں، ان کو میرے خیال میں چاہیے کہ وہ فوراً پولیس کو یا سیکیورٹی کو یا جو مطلب یہاں کے ادارے ہیں، سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو اطلاع دیں۔ تیسرا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پریونٹ اور اس قسم کی پالیسیز ہیں ان پہ دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرف یہ یہاں کے مسلمانوں میں ویسٹ میں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ ہر پالیسی جو ڈیولپ ہو رہی ہے وائلنس کے حوالے سے یا ٹیررزم کو روکنے کے حوالے سے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اور پھر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اناؤنسمنٹس ہیں، ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، تو وہ بھی مسلمانوں پہ فوکسڈ ہیں۔ تو میرے خیال میں مسلمانوں کے اندر और खासतौर पर यंगर मार्जिनलाइज जो ग्रुप्स हैं एलिमेंट्स हैं उनमें मार्जिनलाइजेशन बहुत बढ़ रही है, उनमें विक्टिमहुड बहुत बढ़ रहा है। तो किसी न किसी तरीके से रीअश्योरेंस की जरूरत है कि ये कवानीन, ये लॉज, ये पॉलिसीज जो हैं ये सारी सोसाइटीज के लिए हैं।
और जो एक फेयर का माहौल है, एक डर का जो माहौल है, जो मासेस में यूरोप में अमेरिका में जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर, जो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है कि लोगों के अंदर का जो भय है, जो डर है, वो कम हो, खत्म हो?
ये फिनोमेना जो है ये बहुत गंभीर हो रहा है और उसमें मुझे ये लग रहा है कि इसको कुछ वक्त लगेगा कि ये फियर की जो सिचुएशन है ये कम हो। तो एक तो ये है कि ज्यादा विजिलेंस की जरूरत है, दूसरा ये है कि इस खौफ की वजह से, इस फियर की वजह से जो नॉर्मल लाइफ है आम आदमी की वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और तीसरा ये है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के जो तल्लुकात हैं उनको रिपेयर करने की, जैसे मैंने कहा, ब्रिजेस बनाने की और उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसीज के इश्यूज हैं, यंगर जनरेशन को कैसे आपने हैंडल करना है, खासतौर पर यंग मुस्लिम्स जो हैं, जो डिसग्रंटल्ड मुस्लिम्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, मीडिया जो है उसको भी मेरे ख्याल में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इस किस्म के वाकयात से जो ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन होती है और ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिलता है, मेरे ख्याल में मिलिटेंट फोर्सेस जो हैं, खा वो आइसिस है, खा वो अलकायदा है, खा वो अल शबाब है, वो भी यही चाहते हैं, या तालिबान है, वो यही चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिले। तो एक तरफ तो मीडिया का रोल ये है कि लोगों को इन्फॉर्म करे, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर वो ज्यादा कवरेज आ जाता है तो उससे मिलिटेंट्स को वो उनकी जो डिजायर्ड एक किस्म का ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिसिटी मिले, उसमें भी उनको बाय डिफॉल्ट हेल्प होती है।
ये थे ब्रिटेन की बाथ स्पा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इफ्तिखार मलिक, जो बता रहे थे कि जो लोग कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होते हैं उन्हें रास्ते पर लाने के लिए कई स्तर पर काम करने की जरूरत है।
सुरों की माला जब गुथती है तो बनता है गीत। फिल्मी दुनिया के वो गीत कैसे बने जो अमर हो गए।
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है।
कैसे रची रचनाकारों ने धुने और कैसे हुआ गायकी का कमाल।
वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
संगीत की मिठास से सराबोर धुनों के बुनने और गुनने की कहानी, बीबीसी हिंदी की विशेष श्रृंखला संग संग गुनगुनाओ।
संग संग तुम भी गुनगुनाओगे।
संगीत समीक्षक यतीन्द्र मिश्र से सुनिए 26 मार्च से हर रविवार दिन भर कार्यक्रम में।
योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालते ही चुनावी घोषणा पत्र में किया वादा पूरा किया और प्रदेश के सभी गैर कानूनी बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दे दिया। सरकार का तर्क है कि इन अवैध बूचड़खानों की वजह से गायों की तस्करी होती है जिससे दुग्ध आधारित उद्योग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सरकारी आदेश जारी होते ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस और प्रशासन की छापेमारी हुई और ताबड़तोड़ सैकड़ों मीट शॉप्स और बूचड़खानों को बंद करा दिया गया। नतीजा ये हुआ कि राज्य में भैंस के मांस की किल्लत हो गई है, बीफ पर आधारित रेस्तरां कारोबार प्रभावित हुआ है और इस काम से जुड़े सैकड़ों लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने गाजियाबाद के कायला भट्टा इलाके में ऐसे ही कुछ बीफ कारोबारियों से बात की।
हम इस वक्त हैं गाजियाबाद के कायला भट्टा इलाके में, बगदाद बिरयानी सेंटर है और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि पुलिस ने जबरदस्ती इनकी दुकानें बंद करवाई हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोहम्मद यासीन है।
ये दुकान आपकी है
जी?
पुलिस ने कैसे बंद करवाई, कब की घटना है ये?
मंगल की सुबह की घटना है, ना तो हमें कोई इतला दी उन्होंने, जब एक दिन पहले आने के हमसे इतला करते तो हम नहीं काटते पशु, दिख रही प्रशासन को कि भैंस है, फिर उसका सैंपल भरने की क्या जरूरत है।
अच्छा, उसमें से सैंपल लेकर गए?
सैंपल लेके गए, वो सैंपल को गाय बना देंगे, हम क्या कर सकते हैं उसमें।
करीब कितने पुलिस वाले आए थे?
प्रशासन था पूरा, SSP थे, कोतवाल थे और पुलिस वाले थे काफी। दसियों गाले जी, मैं क्या बताऊं आपको।
आपका नाम क्या है?
हनीफ नाम है मेरा।
मोहम्मद हनीफ, यहाँ पर कितनी दुकानें, इस्लाम नगर और ये जो कायला भट्टा है, कितने लोग लगे हुए हैं?
100 दुकानें बैठेंगे, कम से कम 400-500 आदमी इसमें लेबर लगेगी अगर जोड़ोगे तो।
और ये सारी दुकानें आप कह रहे हैं मंगलवार की सुबह पुलिस एक साथ आई है और सबको बंद करवा गई?
पुलिस आई है, पुलिस ने गाली बकी है, गुप्तार बकी है, ये फेंक दो, अगर जो भी मिल गया उसे ले जाएंगे, बंद कर देंगे, ये तुम्हारा मास जितना भी है सब खट्टे पे जाएगा।
ये पुलिस का कहना है कि भाई ये जो है लाइसेंस इन दुकानों का नहीं था।
तो नाम ही नहीं है अभी, लाइसेंस का नाम नहीं है भाई, ये कह रहे हैं कि बंद करो दुकान, दुकान नहीं खुलनी चाहिए, एक बोटी भी तो आपकी दुकान में नहीं मिलनी चाहिए।
आपकी दुकान को लाइसेंस मिला था?
नहीं।
ये जो सरकार बात करती है, पुलिस बात करती है कि भाई हम जो है अनलाइसेंस दुकानें हैं जिनको लाइसेंस नहीं मिला है, हम उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
लाइसेंस के लिए कोशिश करिए।
क्या नाम है आपका?
शमीम अहमद। पुलिस का कहना तो जायज है लेकिन वो देते नहीं है ना लाइसेंस, यहाँ पर है ही नहीं। पुराने लाइसेंस जो इशू करा रहे हैं उन्होंने करे ही नहीं, वो भी बता रहे हैं 4 लाइसेंस है हमारे पास ऑलरेडी, पर वो इशू नहीं कर रहे। उसको
लाइसेंस इशू नहीं करते?
नहीं करते। नगर निगम के डॉक्टर से बात हुई थी, वो कहता है हम सारी आबादी हिंदुओं की है तो लाइसेंस बनाने की जिम्मेदारी तो उसकी है, नगर निगम की।
यहाँ पर इस होटल में भी पुलिस वाले आए थे?
सुबह 4:30 बजे की बात है, आए 15-20 पुलिस वाले और आन के कह लगे इस जो सामान बना हुआ है आपका इसको फेंक दो, आज से दुकान मत खोलना, दुकान बंद है हमारी कल से।
क्या आपने तो कह दिया कि दुकानें बंद हो जानी चाहिए, ये नहीं देख रहे कि इनका शुरू से 50 साल से ही काम चल रहा है?
600-700 जो मजदूर काम कर रहे थे इन दुकानों पर वो कहाँ जाएंगे गरीब।
यहाँ पर आप बता रहे थे कि किसी की मौत भी हुई है?
हनी भाई का मीट बचा हुआ था मंगल के रात, बदतमीजी गरीब बुजुर्ग आदमी थे, 65 साल की उम्र थी, 70 साल के मेरे से बड़े थे, वो सदमे ले गए, वो सदमे लेते जैसे उन्होंने बदतमीजी करी गिरे गिरते मर गए।
गाजियाबाद के कुछ बीफ कारोबारियों से बात कर रहे थे विनीत खरे। लखनऊ में एक मशहूर कबाब रेस्तरां है टुंडे कबाबी। अगर कोई लखनऊ जाए और कबाब का शौकीन हो तो टुंडे कबाबी में जाकर कबाब खाना उसकी फहरिस्त में शुमार होता है, लेकिन सरकार के अचानक उठाए कदम की वजह से बीफ की सप्लाई प्रभावित हुई और टुंडी कबाबी रेस्तरां को एक दिन के लिए बंद करना पड़ा। मैंने बात की लखनऊ के चौक इलाके में टुंडी कबाबी रेस्तरां को चलाने वाले अबू बकर से।
जब हम लोग अपने होटल आए तो पता चला कमेला नहीं हुआ, गोश्त नहीं होगा, गोश्त की दुकानें सब बंद हो गई, गोश्त कहीं भी नहीं मिला, गोश्त पूरे लखनऊ में नहीं मिला कहीं।
कहाँ कहाँ से आप गोश्त लेते हैं?
हम सर लेते हैं बल्लोपुरे से भी लेते हैं, सदर से भी गोश्त आता है, कैंट एरिया से भी आता है, सब गोश्त वालों ने हाथ खड़े कर दिए।
तो ये दुकानदार क्या कह रहे हैं जो आपको सप्लाई करते हैं?
वो कह रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से मनाती है, अब हम लोग बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो अभी तो वो ये कह रहे हैं सर।
तो ये जो लोग थे जो आपको मीट सप्लाई करते थे, ये लोग लाइसेंसी दुकानें थी या बिना लाइसेंस वाली दुकानें थी?
इसमें सर कुछ बगैर लाइसेंस भी होंगी, लेकिन सर इसके बारे में तो हमको मालूम नहीं कि बरा ये सब बड़े दुकानदार हैं लखनऊ शहर के। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये गैर कानूनी थे, कानूनी वाले होंगे, लेकिन अब आगे गवर्नमेंट उसका खुद ही अपने निकालेगी कौन कानूनी था कौन गैर कानूनी था।
आपकी जो सेल थी उस पर कितना असर पड़ा है?
सर कुछ भी नहीं सेल है, आज एक दिन पहले दिन दुकान खुली है बंद हुई है, आज दूसरे दिन खोली है, चिकन कबाब बेच रहे, कोई कस्टमर आ नहीं रहा, इक्का दुक्का कस्टमर आ रहा है।
अब आप क्या करेंगे?
मैं आपके माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी से यह कहूँगा इसका कोई ना कोई रास्ता निकालने में, जो गैर कानूनी है उनको कानूनी बनावे, जो कानूनी है उनको दुकान खोलने दे में।
अगर पैसे के टर्म्स में बात करें तो कितना नुकसान हो रहा है आपको हर दिन?
सर अब यह दूसरा दिन है, हम क्या बतावे, दुकानदारी का देखिए खाने का मसला है कि हमारे हम लोग पेट भरने तो आते नहीं, मजे के लिए आते हैं पूछ पूछ के, जो भी लखनऊ आया टुंडे का कबाब खाना है मजे के लिए, अब दुकानदारी का मसला ही नहीं है
जी।
तो अभी कोई फिक्र नहीं है कि 100 आए 50 आए 150 आए, सिर्फ किसी चीज नहीं लेकिन काफी असर है। आप सुबह से समझ लीजिए जो बैठे हैं बस सन्नाटे बैठे, इक्का दुक्का कस्टमर आ रहे हैं।
ये थे लखनऊ के चौक इलाके में टुंडी कबाबी रेस्तरां चलाने वाले अबू बकर।
बीबीसी इंडिया बोल।
उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई, मांस के व्यापार पर निर्भर लाखों मुसलमानों, दलितों और दूसरे समुदायों का क्या होगा? मुख्यमंत्री बनते ही आदित्यनाथ योगी के इन फैसलों पर क्या है आपकी राय? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 25 मार्च शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का, आपकी पातियों का,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज मेरे साथ हैं
सुमिरन।
बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में सुमिरन। अच्छा, बहुत सारी चिट्ठियां, लेकिन मैं देख रहा हूँ 3 पोस्ट कार्ड हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक ही व्यक्ति ने लिखे हैं, वही रंगीन लिखावट।
बिल्कुल, लिखावट और जिन कलम का इस्तेमाल किया गया, रंग का इस्तेमाल किया गया,
लाल, हरा, नीला, काला, 2 पोस्ट कार्ड तो वैसे और एक उनकी चिट्ठी है,
एक चिट्ठी है।
तो नाम भी बता दीजिए और क्या लिखा है ये भी बता दीजिए।
हाँ, लेकिन उनसे पहले दूसरी एक चिट्ठी से शुरू करती हूँ, जो थोड़े क्रिटिसिज्म है उसमें, लेकिन शुरुआत उससे करते हैं
जी।
तो ये पत्र आया है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का, जो लिखते हैं कि आपने इतनी लंबी फौज बीबीसी हिंदी की उत्तर प्रदेश में तैनात की, इसके बावजूद
वही पुराने श्रोता है जो अमेठी से लिखते हैं।
बिल्कुल, अमेठी से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी फौज तो तैनात की लेकिन बीबीसी उत्तर प्रदेश की जनता को भांपने में विफल रहा।
हमारे पास तो बड़ी फौज है ही नहीं, हमारी जो फौज है वो आप हैं, हमारे श्रोता ही हमारी फौज हैं। और आपने जो बात जहां तक की उत्तर प्रदेश में भांपने में गलती की, तो आप मुझे ये बताइए कि कौन ऐसा शख्स है जिसने उत्तर प्रदेश के नतीजे भांपने में गलती ना की हो? किसको उम्मीद थी? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को खुद ही शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी कि उनके पास 300-325 तक का आंकड़ा पहुँच जाएगा। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम, और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि चुनाव के मामले में खासतौर पर बीबीसी किसी तरह का कोई भविष्यवाणी नहीं करती है, और हमारे संवाददाता जहां जाते हैं वहां का माहौल देख करके उसके हिसाब से रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन आपने आलोचना की है तो एक श्रोता के तौर पे आपकी आलोचना को हम स्वीकार करते हैं।
तो ये पत्र जिनकी हम बात कर रहे थे कि
रंगीन चिट्ठी, जी
बिल्कुल, ये है नागेंद्र कुमार कुशवाहा का, जो जिला शिवहर बिहार से लिखते हैं,
लगातार लिखते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल, और ये कहते हैं कि 19 मार्च को दूसरी सभा दिन भर में कार्यक्रम संडे दिन भर में उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से ली गई साक्षात्कार सुना, काफी पसंद आया।
वो जो इंटरव्यू था समीर आत्मज मिश्र ने किया था, वो चुनाव के दौरान लिया गया था, यानी जब आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब वो उनका इंटरव्यू लिया गया था, और उसमें उन्होंने कई बातें कही थी राम जन्मभूमि वगैरह से संबंधित भी। इन्होंने और भी तारीफ की है, शायद निखिल रंजन की
दुनिया जहान की
तारीफ की है, और चिट्ठी लिखी है, उसमें क्या लिखा है?
रेहान फजल साहब द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम विवेचना सुना, काफी पसंद आया। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद जिन्ना अली पर दर्शाया गया प्रेम मोहब्बत की कहानी थी, इश्क और प्यार में जो कहानी थी उसको
दर्शाया गया, उनको पसंद आई। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा साहब आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, अगली चिट्ठी जो आप लिखें हमें उसमें ये जरूर बताइएगा कि आप तीन तरह की स्याही का इस्तेमाल क्यों करते हैं। बहुत अच्छी लगती है मुझे, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मत लिखिए, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? नीला, हरा और लाल रंग।
दुनिया जहां की एक और तारीफ आई है, तारीफ की है फारूक अब्दुल्ला फिजा ने, लक्ष्मीपुर रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार से, जिन्हें ये कार्यक्रम काफी अच्छा लगा।
और इसके बाद अब मैं देख रहा हूं बहुत सारे ईमेल आपके पास हैं, कुछ उनका भी जायजा ले लिया जाए।
जी, तो तीन ईमेल लगातार मोहनलाल शर्मा के लिए आए हैं। पहला ईमेल लिखा है जंग बहादुर सिंह ने गोल पहाड़ी से, जो कहते हैं कि अफगान पाकिस्तान के बीच बढ़ रहा मनमुटाव और गहराता सीमा विवाद पर जो केंद्रित श्री मोहनलाल शर्मा जी का दुनिया जहान था वो उन्हें बहुत पसंद आया, और श्री रहीमुल्ला यूसुफ जई और वसुतुल्ला खान जी ने जो इस पर पर्सपेक्टिव पेश किया वो इन्हें पसंद आया। वहीं दूसरी तरफ मोहनलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों पे प्रकाश डाला जो दुनिया जहान बहुत पसंद आया, ऐसा लिखा है महेंद्र सहारण ने, और अपने पूरे परिवार के साथ
सुनीता मंजू और मुकेश उन्होंने नाम लिखे हैं।
बिल्कुल, तो उन्हें बहुत पसंद आया, और साथ ही उन्होंने कहा कि bbchindi.com पर रेहान फजल की जो विवेचना है भगत सिंह के आखिरी 12 घंटे वो उन्हें
बहुत ही रोमांचकारी लगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरा भी ईमेल आप कह रही थी, अभी आपने दो पढ़े, तीसरा ईमेल क्या है?
ये विकास शर्मा का कुरुक्षेत्र से है, जो कहते हैं कि मोहनलाल शर्मा की विवेचना सुनी, बहुत पसंद आया और शानदार प्रस्तुति रही उनकी।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जो दुनिया जहान और विवेचना की तारीफ करते हैं, इससे हमें बड़ा बल मिलता है, हौसला मिलता है। मैं ये चाहूंगा कि आप कभी अपनी तरफ से भी लिखा करें कि आपको किस तरह के विषय पसंद आते हैं। ये तो हमारी तरफ से चीजें जाती हैं सुमरिन, यानी रेहान फजल तय करते हैं और हमारे दूसरे साथी, लेकिन श्रोता हमसे क्या चाहते हैं ये भी अगर लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे, वादा नहीं करते, कोशिश करेंगे कि उनकी चीजों को भी हम समेटें। मैं अभी और बहुत सारी ईमेल पढ़ना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, लेकिन अब समय नहीं है सुमरिन, इसलिए आप कहें तो मैं पता बता दूं।
बिल्कुल,
तो हमारा पता नोट कीजिए, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल अगर लिखना चाहें तो तुरंत नोट कीजिए hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। लंदन में संसद के सामने गुरुवार को हुए हमले के बाद ब्रिटेन के सुरक्षा बलों ने बर्मिंघम में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ी समाचार एजेंसी अमाक के मुताबिक आईएस के एक सैनिक ने वेस्टमिंस्टर पर हमला किया है। बेल्जियम की में पुलिस ने कहा है कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने एक बाजार में लोगों के बीच अफरा तफरी मचा दी है। इस घटना में किसी के घायल होने की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिनभर की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।